एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथ सार में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जो सिर्फ पन्नों का संग्रह नहीं है, ये तो पढ़ने के तजुर्बे पर ही एक सफर है।
हाँ बिल्कुल,
हम बात कर रहे हैं इटैलो कैल्विनो के बहुत ही अनोखे और कह सकते हैं मशहूर उपन्यास यदि सर्दियों की रात में एक मुसाफिर की।
नाम ही कितना दिलचस्प है, से उन नोते दिनवेरनो उन व्याजतोरे,
है ना। अच्छा, पहले थोड़ा कैल्विनो के बारे में जान ले। इटैलो कैल्विनो 1923 से 1985 तक 20वीं सदी के इटली के मेरे ख्याल से सबसे कल्पनाशील लेखकों में से एक।
हाँ माना जाता है।
पैदा हुए क्यूबा में और पले बढ़े इटली में। उनके माता पिता वैज्ञानिक थे और शायद इसी वजह से उनके लेखन में विज्ञान वाली सटीकता और कल्पना की ऊंची उड़ान का एक गजब का मेल दिखता है।
अच्छा, ये दिलचस्प है।
शुरू में वो यथार्थवाद मतलब रियलिज्म से जुड़े थे, लेकिन फिर जल्दी ही रास्ता बदला और कहानियों, प्रतीकों, साहित्यिक प्रयोगों की दुनिया में चले गए। और हाँ, वो उलीपो नाम के एक ग्रुप से भी जुड़े थे।
उलीपो, वो क्या था?
हाँ, एक बड़ा ही दिलचस्प साहित्यिक समूह। ये लोग मानते थे कि साहित्यिक नियमों या बाधाओं से ही, मतलब कॉन्स्ट्रेंट्स लगाने से ही नई क्रिएटिविटी पैदा होती है।
वाह, क्या सोच है।
तो यदि सर्दियों की रात में एक मुसाफिर, ये 1979 में छपा और इसे पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर की एक बहुत अहम कृति माना गया। ये सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, बल्कि ये पढ़ने वाले से ही सवाल करता है, तुम क्यों पढ़ रहे हो, कहानी में क्या चाहते हो।
मतलब ये मेटाफिक्शन है।
बिल्कुल, मेटाफिक्शन का शानदार उदाहरण। वो कहानी जो खुद जानती है कि वो एक कहानी है और पढ़ने वाले को भी ये एहसास कराती रहती है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस साहित्यिक भूल भुलैया के रेशे रेशे को समझें। तैयार हैं इस अनोखे सफर के लिए?
बिल्कुल तैयार। और सफर की शुरुआत, ओह, वो तो वाकई चौंकाने वाली है,
है ना।
शायद ही किसी उपन्यास की पहली लाइन इतनी सीधी पढ़ने वाले से बात करती हो। आप इटैलो कैल्विनो का नया उपन्यास यदि सर्दियों की रात में एक मुसाफिर पढ़ना शुरू करने वाले हैं।
हाँ,
सोचिए जरा, किताब खोली और लेखक सीधे आपसे बात कर रहा है। ये आपका इस्तेमाल, ये कोई मामूली बात नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये तो पढ़ने वाले को पकड़कर सीधा कहानी के मंच पर खड़ा कर देता है।
आप सिर्फ दर्शक नहीं रहे,
आप ही मुख्य किरदार हैं।
हाँ,
और ये एहसास कितना रोमांचक होता है। आप एक जासूसी कहानी में डूबने लगते हैं, माहौल बन रहा है, रहस्य गहरा रहा है, और फिर?
और तभी धड़ाम, सब गुड़ गोबर। पता चलता है कि छपाई में गड़बड़ हो गई है।
हाँ, कुछ पन्ने दोहरा दिए गए हैं और कहानी बीच में ही टूट गई है।
वो जो मजा आ रहा था ना, वो अचानक झुंझलाहट में बदल जाता है।
सही कहा। और कमाल की बात यह है कि पाठक की यही झुंझलाहट, यही अधूरी कहानी को पूरा पढ़ने की बेचैनी,
हाँ, वही इस उपन्यास की असली कहानी बन जाती है।
अरे वाह, ये तो कमाल है।
बिल्कुल,
मतलब असल कहानी शुरू ही पाठक की परेशानी से होती है।
बिल्कुल, पाठक की बस एक ही तमन्ना रह जाती है, मुझे वो शुरू वाली कहानी पूरी पढ़नी है। और यहीं से शुरू होता है उपन्यास का केंद्रीय संघर्ष।
पाठक चाहता है एक सीधी मुकम्मल कहानी।
हाँ, लेकिन उसे मिलती हैं लगातार बाधाएं, भटकावें। हर बार जब लगता है कि अब सही किताब हाथ लगी है,
तो पता चलता है कि ये तो किसी बिल्कुल ही अलग उपन्यास का पहला अध्याय है, और हाँ, वो भी अधूरा।
हाँ हाँ,
सही।
तो ये उपन्यास एक बुनियादी सवाल उठाता है, है ना।
क्या?
कि जब हम पढ़ते हैं तो असल में हम क्या ढूंढ रहे होते हैं? क्या हमें कहानी का अंत चाहिए, एक समाधान, या फिर वो जो शुरुआत में होता है, एक वादा, एक रहस्य, एक अनजानी दुनिया में पहला कदम रखने का रोमांस, क्या वही काफी है?
केल्विनो हमें इसी कश्मकश में डाल देते हैं।
बिल्कुल।
और इसी तलाश में बेचारा पाठक वो वापस किताबों की दुकान पर जाता है।
हाँ,
और वहां उसकी मुलाकात होती है लुडमिला से।
लुडमिला, दूसरी पाठक।
हाँ, दूसरी पाठक। और मजे की बात यह है कि उसके साथ भी ठीक वही हुआ है, उसे भी वही अधूरी, गलत छपी हुई किताब मिली है।
तो दोनों की परेशानी एक जैसी है।
हाँ, और उनकी ये साझा परेशानी जल्द ही एक दिलचस्प, कह सकते हैं, साहित्यिक जासूसी में बदल जाती है, और धीरे धीरे एक रोमानी रिश्ता भी पनपने लगता है।
अच्छा, तो दोनों मिलकर उस पहली खोई हुई कहानी को ढूंढने निकलते हैं।
हाँ, लेकिन यहीं से वो चक्कर शुरू होता है जो इस उपन्यास की बनावट है, उसकी पहचान है।
चक्कर? कैसा चक्कर?
वो एक पहेली सुलझाने निकलते हैं और दस नई पहेलियों में उलझ जाते हैं, जैसे उन्हें पता चलता है कि कैल्विनो की किताब गलती से एक पोलिश उपन्यास के साथ मिल गई थी।
पोलिश उपन्यास कौन सा?
मालबर्ग शहर के बाहर, आउटसाइड द टाउन ऑफ मालबर्ग। बड़े उत्साह से वो उसे पढ़ना शुरू करते हैं और कुछ पन्नों के बाद
फिर वही कहानी गायब।
हाँ, फिर वही अधूरापन।
और यही सिलसिला चलता रहता है। ये उपन्यास पाठक को जैसे जैसे किसी साहित्यिक रोलर कोस्टर पर बिठा देता है।
सही कहा, रोलर कोस्टर।
उम्मीद जगती है, फिर खोज शुरू होती है और फिर निराशा हाथ लगती है। ये एक पैटर्न बन जाता है।
पाठक और लुडमिला एक के बाद एक 10 अलग अलग उपन्यासों की शुरुआतों से गुजरते हैं।
10?
हाँ, 10।
हाँ,
कभी पोलैंड की कहानी, कभी किसी काल्पनिक देश, सिमेरिया का राजनीतिक ड्रामा,
सिमेरिया,
कभी जापान की पृष्ठभूमि वाला रोमानी उपन्यास, कभी कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर जैसा कुछ,
कभी शेयर बाजार की दुनिया की कहानी। हर बार एक नई शैली, एक नया माहौल, एक नया वादा,
और हर बार वही अधूरापन।
पाठक की हालत क्या होती होगी?
बिल्कुल, ये यात्रा उन्हें किताबों की दुकानों से यूनिवर्सिटी के गलियारों तक ले जाती है, पब्लिशिंग हाउस के दफ्तरों से लेकर सरकारी सेंसरशिप के ऑफिस तक।
हर जगह सुराग मिलते हैं।
हाँ, लेकिन वो सुराग उन्हें मंजिल के बजाय एक और नई अधूरी कहानी तक पहुँचा देते हैं।
ये जैसे कहानियों का एक अंतहीन झरना है। वाह, क्या उपमा है।
जिसकी हर बूंद एक पूरी नदी होने का वादा करती है, पर बूंदी रह जाती है।
कमाल है। अच्छा, चलिए किरदारों से थोड़ा और करीब से मिलते हैं। सबसे पहले तो हमारा नायक पाठक, यानी आप।
हाँ, वो आप।
कैल्विनो का ये आप कहना ये पाठक को सीधे कहानी के केंद्र में ला देता है। और ये पाठक बदलता भी है ना?
हाँ बिल्कुल, शुरू में वो सिर्फ एक कहानी पढ़ना चाहता है, पैसिव रीडर।
हाँ, लेकिन धीरे धीरे वो एक जासूस बन जाता है, एक खोजकर्ता जो इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है।
वो व्यवस्था चाहता है, एक पूरी तस्वीर,
लेकिन कहानियों से बार बार तोड़ती है, बिखेरती है।
और फिर है लुडमिला, दूसरी पाठक।
हाँ, लुडमिला वो सिर्फ पाठक की प्रेम रुचि नहीं है, बल्कि वो पढ़ने के एक अलग नजरिए का प्रतीक भी है।
कैसे?
जहाँ हमारा नायक मतलब पाठक कहानी के अंत तक पहुँचना चाहता है, एक सीधे रास्ते पर चलना चाहता है,
हाँ,
वहीं लुडमिला को कहानियों के शुरुआत के जादू में ज्यादा मजा आता है। वो कहती भी है कि काश कोई ऐसी किताब हो जिसमें सिर्फ शुरुआतें ही शुरुआतें हों।
अच्छा, ये तो बिल्कुल उल्टा है पाठक से।
हाँ, वो ज्यादा सहज है, इस साहित्य गर्भझाले को भी एक खेल की तरह लेती है। एक तरह से वो हमारे नायक को रास्ता भी दिखाती है,
उसे पारंपरिक उम्मीदों से अलग सोचने को उकसाती है।
सही कहा, उसकी वजह से ये उपन्यास सिर्फ दिमागी कसरत ना रहकर एक दिलचस्प प्रेम कहानी भी बन जाता है।
तो एक तरफ लुडमिला है।
हाँ, और जहाँ लुडमिला एक तरह की सकारात्मक ऊर्जा है, वहीं इस पूरे गड़बड़झाले के पीछे एक एक छायादार किरदार है, एर्मिस मराना।
एर्मिस मराना, ये कौन है?
एक रहस्यमयी अनुवादक जो साहित्यिक जालसाजी का मास्टरमाइंड लगता है।
साहित्यिक जालसाजी मतलब फ्रॉड।
हाँ, और उसका फलसफा, उसकी फिलॉसफी बड़ी दिलचस्प और थोड़ी डरावनी भी है। वो मानता है कि दुनिया में कोई भी चीज असली या मौलिक नहीं है,
ओरिजिनल नहीं है।
नहीं, हर कहानी किसी दूसरी कहानी का अनुवाद है, हर किताब एक तरह का जालसाजी है, और लेखक लेखक तो बस एक वहम है।
क्या बात है, ये तो बहुत रेडिकल सोच
है ना? वही है जो नकली अनुवादों और जानबूझकर अधूरी छोड़ी गई किताबों का जाल बुनता है।
तो वो विलन हुआ।
अब सवाल यही उठता है, क्या वो सचमुच खलनायक है या साहित्य की असलियत का एक बदसूरत चेहरा दिखा रहा है कि हर कहानी कहीं ना कहीं अधूरी है, किसी और से ली गई है।
ये सोचने वाली बात है। और इसी उलझन के बीच एक और किरदार है, सिलास फ्लैनरी।
हाँ, सिलास फ्लैनरी वो थोड़ा पीछे रहता है लेकिन अहम है।
वो आयरलैंड का एक मशहूर लेखक है, लेकिन आजकल लिख नहीं पा रहा, राइटर्स ब्लॉक जिसे कहते हैं।
अच्छा।
पाठक को उसकी डायरी मिलती है और उस डायरी से लेखक की अपनी परेशानियां सामने आती हैं। क्या मैं कुछ नया लिख सकता हूँ? क्या मेरी कहानी असली है? पाठक मुझसे क्या उम्मीद करते हैं?
तो उपन्यास के मुख्य सवाल लेखक के नजरिए से भी दिखते हैं।
हाँ, और फ्लैनरी खुद भी मराना के जाद में फंसने वाला होता है।
तो कहानी आगे बढ़ती है, पाठक और लुडमिला उस पहली कहानी की तलाश में है, लेकिन अब वो एर्मिस मराना की इस बड़ी साजिश को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं।
ये सब क्यों हो रहा है? कौन है ये मराना?
उनकी ये खोज उन्हें साहित्यिक दुनिया के अलग अलग कोनों में ले जाती है और हर मोड़ पर उन्हें एक और नई आकर्षक लेकिन
अधूरी कहानी का टुकड़ा मिलता है।
हाँ, जैसे वो पोलिश उपन्यास माल्बोर्ग शहर के बाहर के बाद उन्हें मिलता है खड़ी दहलान से झुककर।
हाँ, जो सिमीरा में सेट है वो भी अधूरा। फिर आता है हवा या चक्कर के डर के बिना,
जिसमें क्रांति और डर का माहौल है।
फिर जमा होती छाया में नीचे देखता है, एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर जैसा।
और केल्विनो हर शैली की ऐसी जबरदस्त नकल करते हैं जिसे पास्टीश कहते हैं ना।
हाँ, पास्टीश।
के हर बार लगता बस यही असली कहानी है,
लेकिन फिर धोखा।
और ये सिर्फ अलग अलग कहानियां नहीं है, ये पाठक को धीरे धीरे मराना के वैश्विक नेटवर्क की तरफ ले जाती है।
वैश्विक नेटवर्क।
हाँ, पता चलता है कि ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी साहित्यिक धोखाधड़ी है जिसके तार कई देशों से जुड़े हैं।
अरे बाप रे।
अब पाठक की खोज सिर्फ अपनी अधूरी किताब ढूंढना नहीं रही बल्कि इस पूरे जाल को समझना बन जाती है।
हाँ।
ये एक तरह की जासूसी कहानी बन जाती है जहाँ सबूत के तौर पर किताबों के टुकड़े मिल रहे हैं।
इसी दौरान सिलास फ्लैनरी की डायरी से और परतें खुलती हैं। फ्लैनरी सोचता है क्या कोई कहानी मौलिक हो सकती है।
वही सवाल।
हाँ, वो एक आदर्श पाठक की कल्पना करता है और मजे की बात है उसकी कल्पना की पाठक बिल्कुल लुडमिला जैसी है।
अच्छा।
मराना फ्लैनरी को भी धोखा देने की कोशिश करता है उसे नकली पांडुलिपियां देकर। तो फ्लैनरी की डायरी से हमें लेखक की दुविधाओं का पता चलता है
और खोज जारी रहती है और शुरुआतें मिलती हैं।
हाँ, जैसे आपस में गुथी रेखाओं के जाल में, आपस में काटती रेखाओं के जाल में,
चांदनी में प्रकाशित पत्तियों के कालीन पर,
एक खाली कब्र के चारों ओर, और दसवीं शुरुआत है नीचे, कौन सी कहानी अपने अंत की प्रतीक्षा कर रही है।
10 शुरुआतें, सोचिए पाठक की क्या हालत हुई होगी बेचारा।
हाँ, लेकिन उपन्यास का चरमोत्कर्ष क्लाइमेक्स वो मराना के साथ किसी लड़ाई झगड़े में नहीं होता।
नहीं तो फिर
वो घटित होता है एक बड़ी सी लाइब्रेरी में।
लाइब्रेरी में।
हाँ, पाठक वहाँ पहुँचता है और दूसरे पाठकों को अपनी अपनी पसंद की किताबों के बारे में बातें करते सुनता है। कोई रोमांच चाहता है, कोई ज्ञान, कोई जिंदगी से भागने का रास्ता।
और उसी माहौल में
अचानक पाठक के दिमाग में एक बिजली सी कौंधती है, उसे कुछ समझ आता है।
क्या क्या समझ आता है?
उसे अचानक समझ आता है कि जिन 10 अलग अलग उपन्यासों की शुरुआतें उसने पढ़ी हैं, अगर उनके शीर्षकों को एक साथ मिला दिया जाए,
हाँ,
तो वो खुद एक मतलब वाला वाक्य बनाते हैं।
क्या? सच में?
हाँ।
कौन सा वाक्य?
और वो वाक्य है, यदि सर्दियों की रात में एक मुसाफिर माल्बोर्ग शहर के बाहर खड़ी ढलान से झुककर हवा या चक्कर के डर के बिना जमा होती छाया में नीचे देखता है, आपस में घुथी रेखाओं के जाल में, आपस में काटती रेखाओं के जाल में, चांदनी में प्रकाशित पत्तियों के कालीन पर, एक खाली कब्र के चारों ओर, नीचे कौन सी कहानी अपने अंत की प्रतीक्षा कर रही है।
अरे जाह, ये तो कमाल है। मतलब 10 अधूरी कहानियों के नाम मिलकर खुद एक 11वीं कहानी की शुरुआत बन जाते हैं।
बिल्कुल, यही और यही पाठक का ज्ञानोदय है, एपिफनी।
उसे समझ आता है कि कहानी कभी खत्म नहीं होती, एक कहानी दूसरी कहानी को जन्म देती है।
पूर्णता या अंत शायद एक भ्रम है,
असल मजा तो इस सफर में है, इन अंतहीन संभावनाओं में है।
ये एहसास उसे उस अधूरेपन की बेचैनी से आजाद कर देता है।
तो क्या उसे वो 10 कहानियां कभी पूरी नहीं मिलती, उनका अंत नहीं पता चलता?
नहीं, उपन्यास का समाधान ये नहीं है कि उसे वो 10 अंत मिल जाते हैं, समाधान ये है कि पाठक इस अधूरेपन को स्वीकार कर लेता है।
अच्छा।
और उसे एक दूसरी शायद ज्यादा गहरी पूर्णता मिलती है।
वो क्या है?
लुडमिला के साथ उसका रिश्ता।
ओह हाँ।
उनकी साहित्यिक खोज उन्हें इतना करीब ले आई है कि वो शादी कर लेते हैं। उपन्यास का अंत होता है उनके बिस्तर की दृश्य से,
आखिरी सीन।
हाँ, लुडमिला अपनी किताब पढ़कर बत्ती बुझा देती है, लेकिन पाठक अभी भी पढ़ रहा है। लुडमिला पूछती है, क्या पढ़ रहे हो?
और पाठक क्या कहता है?
और पाठक का जवाब ही उपन्यास की आखिरी पंक्ति है, बस एक क्षण, मैंने इटालो कैल्विनो की यदि सर्दियों की रात में एक मुसाफिर लगभग पूरी कर ली है।
क्या खूब, कहानी घूमकर वापस अपने आप पर आ जाती है।
हाँ।
कहानी का किरदार पाठक ठीक वही किताब खत्म करने वाला है जो हम यानी असल पाठक अपने हाथ में पकड़े हुए हैं या सुन रहे हैं।
ये पढ़ने के पूरे अनुभव को जैसे समेट लेता है।
अद्भुत, वाकई में। तो अगर हम इसके मुख्य विषयों पर नजर डालें संक्षेप में, तो सबसे पहले तो यही है, पढ़ने का मतलब क्या है और पाठक की भूमिका कितनी अहम है।
हाँ, पाठक सिर्फ पैसिव रिसीवर नहीं है।
नहीं, कैल्विनो पाठक को सिर्फ कहानी सुना नहीं रहे, उसे कहानी बनाने के खेल में शामिल कर रहे हैं। ये दिखाता है कि पढ़ने का मतलब सिर्फ शब्द समझना नहीं, अर्थ बनाना भी है।
दूसरा बड़ा सवाल है कला में मौलिकता बनाम नकल का, ओरिजिनैलिटी वीएस कॉपी।
हाँ, महाराणा का किरदार पूछता है, क्या कोई कहानी सचमुच ओरिजिनल होती है या सब कुछ कहीं ना कहीं से लिया गया है, किसी न किसी रूप में एक नकल या अनुवाद है?
और क्या इससे फर्क पड़ता है अगर कहानी हमें पसंद आ रही है?
अच्छा सवाल है। तीसरा, जैसा हमने बात की, कहानियों को पूरा पढ़ने की हमारी गहरी चाहत,
वो अंत की तलाश।
हम अंत क्यों चाहते हैं? क्या शुरुआत का रोमांच ज्यादा कीमती नहीं? कैल्विनो हमें बार बार अधूरी कहानियां देकर हमारी इसी आदत पर सवाल उठाते हैं। फिर प्रेम और पढ़ने का गहरा रिश्ता भी है। पाठक और लुडमिला का प्यार किताबों के जरिए ही परवान चढ़ता है।
हाँ, ये दिखाता है कि साथ में पढ़ना, कहानियों पर बात करना भी कैसे एक तरह की इंटीमेसी, एक अंतरंगता पैदा कर सकता है।
और आखिर में कहानियों की अनगिनत दुनियाएं, वो 10 अलग अलग शुरुआतें मानो साहित्य के विशाल भंडार का जश्न मनाती हैं, दिखाती हैं कि कितनी तरह की कहानियां कही जा सकती हैं।
शैली की बात करें तो वो आप कहकर सीधे पाठक से बात करना, सेकंड पर्सन नरेशन, वो सबसे अनोखा है।
हाँ, बहुत प्रभावी है।
और मेटाफिक्शन का इस्तेमाल, यानी कहानी का खुद अपने कहानी होने पर बात करना तो जबरदस्त है ही।
फिर वो फ्रेम नैरेटिव वाली संरचना, बाहर पाठक और लुडुमिला की खोज चल रही है और उसके अंदर 10 अधूरी कहानियां फंसी हुई हैं,
जो बाहरी कहानी को लगातार प्रभावित करती हैं। और पैस्टिश, कैल्विनो का अलग अलग शैलियों की इतनी निखुट नकल करना कि हर टुकड़ा असली लगे, वो कमाल का है।
इस किताब को पढ़ने का अनुभव भी बड़ा अजीब है। शुरू में शायद थोड़ी झुंझुलाहट हो, थोड़ा गुस्सा आए कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ।
हाँ, होता है।
लेकिन धीरे धीरे ये झुंझुलाहट हैरानी और फिर आनंद में बदल जाती है। आप कैल्विनो की कारीगरी पर दंग रह जाते हैं।
और इस पूरी दिमागी कसरत के बीच पाठक और लुडुमिला की प्रेम कहानी एक भावनात्मक सहारा देती है। वो कहानी को जमीन पर रखती है। उनका रिश्ता बहुत सच्चा और प्यारा लगता है।
हाँ, मेरे ख्याल से इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि हम अपने पढ़ने के तरीके के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं।
सही कहा।
किताब खत्म करने के बाद शायद हम किसी भी किताब को उसी नजर से ना देखें। हम अपनी उम्मीदों के प्रति ज्यादा सजग हो जाते हैं।
ये किताब पढ़ने के आनंद और रहस्य को फिर से जगा देती है। ये हमें तैयार जवाब नहीं देती, बल्कि खूबसूरत सवाल देती है। हम कहानियां क्यों पढ़ते हैं, क्यों सुनते हैं?
हाँ, वो पंक्ति याद है, पढ़ना किसी ऐसी चीज की ओर जाना है जो होने वाली है और अभी तक कोई नहीं जानता कि वह क्या होगी। क्या खूब कहा है, सच में। अंत में शायद हम कह सकते हैं कि ये उपन्यास पढ़ने की कला और किताबों के लिए एक प्रेम पत्र जैसा है।
बिल्कुल। और शायद इसकी ये अधूरी कहानियों वाली बनावट वो जिंदगी की अनिश्चितताओं और उसकी कभी न खत्म होने वाली संभावनाओं को भी दर्शाती है, इसीलिए आज भी पाठकों को अपनी ओर खींचती है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।